6 अक्टूबर 1981 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात यौम के पूर्व युद्ध के ऑपरेशन बद्र की 8वीं वर्षगांठ पर काहिरा में एक सैनिक परेड की सलामी ले रहे थे।
बीबीसी न्यूज एट 6 o'clock। गुड इवनिंग, दिस इज पीटर डोनाल्डसन। President Sadat of Egypt is dead. He was assassinated at a military parade in Cairo, apparently by a group of his own soldiers who opened fire on the
6 अक्टूबर 1981 को सादात 8:30 बजे सोकर उठे। उन्होंने थोड़ी कसरत की, मालिश करवाई और नहाने चले गए। सादात पर बहुचर्चित किताब Autumn of Fury, The Assassination of Sadat लिखने वाले मिस्र के जाने-माने पत्रकार मोहम्मद हिकाल लिखते हैं।
कुछ दिन पहले ही लंदन के उनके दर्जी ने उनकी नई वर्दी सिलकर भेजी थी। उनकी पत्नी जिहान ने नोट किया कि उन्होंने कोट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी है। सादात ने सफाई दी कि इससे उनकी नई यूनिफॉर्म की शक्ल बिगड़ जाएगी। उन्हें याद आ गया कि उन्होंने अपनी जेरूसलम यात्रा के दौरान भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मोटे लग रहे थे। जब वो परेड पर जाने के लिए बाहर आए तो मेज पर रखा अपना फील्ड मार्शल का बेंत उठाना भूल गए। बाद में जिहान ने कहा कि ये भूल एक अपशकुन थी।
उस समय बॉब जोविंस काहिरा में बीबीसी संवाददाता हुआ करते थे। एक पत्रकार के लिए किसी सैनिक परेड को कवर करना बहुत बोझिल और रूटीन असाइनमेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस परेड में गए क्योंकि वो अपने एक बेटे और उसके दोस्त को वो परेड दिखाना चाहते थे।
Well, all day, everything in Egypt's an all day. I mean, you had to get there, you had to go through security, you had to hang around before it started, but the parade itself went on for several hours. I mean, the army in Egypt is huge.
मिस्र में पूरे दिन का मतलब पूरा दिन होता है। आपको वहाँ सुबह सुबह ही पहुँचना होता है, अपनी सुरक्षा जांच करवानी होती है। वैसे परेड भी कई घंटों तक चली। मिस्र की सेना काफी बड़ी है और वो उस परेड में 200 टैंकों, मिसाइलों और युद्ध असलहों का प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रपति से लेकर सेना के बड़े बड़े अफसर और कई दूतावासों के सैनिक अटैशे वहाँ कड़कती धूप में बैठे हुए इस परेड को गुजरते देख रहे थे। इस तरह की परेड का आनंद तभी उठाया जा सकता है जब आपके साथ आपके बच्चे भी हों। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपने साथ अपने छोटे बेटे, जो उस समय 10 साल का था, और उसके सबसे अच्छे दोस्त को परेड दिखाने ले जाऊंगा। पत्रकारिता की दृष्टि से ये कोई बहुत समझदारी वाला फैसला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें परेड देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इस परेड ने उन्हें हिला कर रख दिया और वो अपने पूरे जीवन उसे भूल नहीं पाए।
Two grenades exploded, and a group of soldiers jumped from a military truck taking part in the parade and ran towards the president, firing from Kalashnikov automatic rifles. In spite of the literally thousands of troops surrounding the president, the group of assassins continued firing for well over a minute. Then the security services swarmed into action. As the spectators stampeded out of the way of the shooting, the presidential bodyguard shot and killed two of the attackers and overpowered the rest. But the assassins managed to cut down at least 10 people, some of whom were killed. President Sadat was rushed straight to a helicopter which took him to the Mahdi military hospital.
Anwar Sadat par hamla karne walon ke ring leader the Misr ki sena mein Lieutenant Khalid Islamboli. Us din wo subah 3 baje sokar uthe the. Unhone godam se 4 machine guns ko nikal kar unhe load kiya tha और अपने साथी अब्बास मोहम्मद से कहा था कि वो उन मशीन गन्स पर कोई निशान लगा दे। अब्बास ने उनकी नालों पर कपड़े का एक टुकड़ा लगाकर उन्हें बाकी मशीन गन्स के बीच रख दिया था। मोहम्मद हिकाल लिखते हैं,
खालिद का ट्रक जैसे ही सलामी मंच के सामने पहुंचा, उसने अचानक अपनी पिस्टल निकालकर ड्राइवर की कनपट्टी पर लगाकर उसे ट्रक रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाए कि ट्रक तिरछा हो गया। ट्रक रुकते ही खालिद नीचे कूदा और उसने अफरा तफरी फैलाने के लिए दूर से ही सलामी मंच की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका। इस बीच अब्बास मोहम्मद ट्रक के पीछे के हिस्से से राष्ट्रपति की तरफ गोली चलाने लगा। उसकी पहली गोली सादत की गर्दन में लगी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ड्राइवर ने सलामी मंच के दूसरी तरफ कूद कर एक खंभे के पीछे आड़ ले ली। ये सब इतने अचानक हुआ कि कम से कम 30 सेकंड तक राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
बॉब जोविंस बताते हैं कि सादात के अंगरक्षकों की ओर से जवाबी कार्रवाई थोड़ी देर से शुरू हुई थी।
The response from security was incredibly limited.
सुरक्षा बलों की तरफ से इसका जवाब बहुत संकुचित तरीके से दिया गया। बहुत से सैनिकों के पास तो कोई हथियार ही नहीं थे और मैं समझता हूं कि उनमें से बहुतों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सैनिकों को अपने ऑटोमेटिक हथियारों में लाइव मैगजीन लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
मिस्र की वायुसेना के विमानों की कलाबाजी के बाद तोपखाने की बारी थी। जब एक ट्रक अचानक परेड के रास्ते से हटकर खड़ा हो गया तो स्टैंड्स पर बैठे दर्शकों ने समझा कि शायद ट्रक खराब हो गया है। हिकाल लिखते हैं,
पहली बार दर्शकों को तब ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने हवा में दो ग्रेनेड फेंके जाते देखे। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सादात के सबसे नजदीक उनके अंगरक्षक ब्रिगेडियर अहमद सरहान थे। बाद में उन्होंने जांच आयोग को बताया कि मैं राष्ट्रपति की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा, राष्ट्रपति महोदय नीचे झुकिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस दिशा में 5 फायर किए जिधर से गोलियां आ रही थीं। खालिद और अब्दुल सलाम दोनों के पेट में गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद सलामी मंच पर गोलियां चलाना जारी रखा।
इस बीच बॉब जॉविन जमीन पर लेट चुके थे। उनके बेटे स्टैंड के पीछे जाकर छिप गए थे।
When I hit the deck, they ran around the back of the stand and hid underneath it, I think. And the shooting seemed to go on for quite a long time.
जब मैं अपने को बचाने के लिए नीचे गिरा तो बच्चे पीछे के स्टैंड्स की तरफ दौड़ते हुए चले गए और उनके नीचे छिप गए। मेरे ख्याल से गोलियां काफी देर तक चलीं। बाद में ही हमें पता चल पाया कि इस घटना का उन पर कितना बुरा असर पड़ा था।
उधर सादात की पत्नी जेहान सादात सलामी मंच के ऊपर की एक खिड़की से ये परेड देख रही थी। उन्होंने बीबीसी को बताया,
When it happened, my bodyguard pushed me because the bullets were coming in the window. And I said, What are you doing? He said, This is my duty, madam. And really, he saved me. When the bullet stops and the fire stops, I rushed to the window again.
जब ये शुरू हुआ तो मेरे अंगरक्षकों ने मुझे धक्का दे दिया क्योंकि गोलियां खिड़की की तरफ आ रही थीं। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमारा कर्तव्य है मैडम, हमारा काम आपकी सुरक्षा करना है। जब गोलियां चलना बंद हुई तो मैं खिड़की की तरफ भागी ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई। मैं सीधे अस्पताल गई, वहां मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अस्पताल लोगों से भरा पड़ा था, डॉक्टरों का प्रमुख वहां मौजूद था। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। उन्होंने कहा, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझ गई कि क्या हुआ है।
जब जॉविन्स परेड स्थल से अपनी कार से बीबीसी दफ्तर की तरफ भागे तो उन्हें पता नहीं था कि अनवर सादात जीवित हैं या नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्र के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुस्ने मुबारक ने टीवी और रेडियो पर ऐलान किया,
मिस्र अरब देशों और पूरी दुनिया को ये बताते हुए मेरी जीभ को लकवा मार गया है और मैं भावनाओं से ओतप्रोत हूँ कि हमारे हीरो और योद्धा अनवर अल सादात हमारे बीच अब नहीं हैं।
आखिर क्या वजह थी कि एक जमाने में अरब जगत के हीरो रहे अनवर सादात को इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद ने अपने हमले का निशाना बनाया? प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा जेएनयू में प्रोफेसर हैं और उन्होंने अनवर सादात पर खासा शोध भी किया है।
मैं मिस्र में रहा हूँ 5 साल मेरे पीएचडी के लिए और डिप्लोमेट बन के भी रहा, और उस ग्राउंड से जो परेड गुजरा और जहाँ सादात की हत्या हुई मैं वहाँ कम से कम 50-60 बार तो आया गया हूँ। तो जब भी गुजरता तो वो मंजर मुझे मेरे आंखों के सामने आता था। मिस्र में 80% मुसलमान हैं, तकरीबन 20% कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं। 1926 से एक इख्वानुल मुस्लिमीन बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप बल्कि वो एक्टिव है। हालांकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी था वो अप टू 52 किंग फारूक के दौरान, लेकिन सबसे ताकतवर सबसे काडर बेस्ड जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन उभर के मिस्र में आई थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन, और ये बहुत पॉपुलर हो गए फलस्तीन की जंग में। और जब नासिर उभर के आए लीडर, मिलिट्री लीडर, उन्होंने बहुत कड़ी पॉलिसी अपनाए क्योंकि उन पे अलेक्जेंड्रिया में हमला हुआ था और वो इख्वानुल मुस्लिमीन पे जिम्मेदारी थोपे थे। और 1955 से 70 تک جب ناصر سطح میں تھے تو ہزاروں کی تعداد میں اخوان المسلمین کے لوگوں کو یا تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا یا صاف طور پہ ان کو سہارا میں لے جا کے ڈال دیا گیا تھا جہاں سے وہ بالکل واپس نہیں آئے اور جب سادات سطح میں آئے تو کئی لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا اور سادات بیلنس کرنے کے لیے لیفٹ کو ان کا بھی سپورٹ لینے گئے اور یہ اسلامک جہاد اسی میں سے ایک گروپ ہے اخوان المسلمین سے جو کہ ان کی پالیسی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور جس طریقے سے وہ عرب معاملوں میں مصر کو آئسولیٹ کرتے تھے ان سب کو لے کے وہ ناراضگی اپنے 6 اکتوبر کو سادات کے خلاف ہتیا کر کے انہوں نے بتا دی۔
انور سادات کی پتنی جیہان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتا کر انور سادات نے خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر ہستاکشر کیے تھے۔
سنس مائی ہزبینڈ وینٹ ٹو اسرائیل ایوری ٹائم ایوری ڈے ایوری منٹ ہی گوز آؤٹ آف دا ہاؤس فار میٹنگ فار سم تھنگ آئی آلویز بلیو دیٹ ہی ول ناٹ کم بیک دیٹ ہی ول بی کلڈ۔
جب سے میرے پتی اسرائیل گئے تھے ہر بار ہر دن ہر منٹ جب بھی وہ کسی وجہ سے یا کسی بیٹھک میں بھاگ لینے باہر جاتے تھے مجھے یہی اندیشہ رہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آ پائیں گے اور انہیں مار دیا جائے گا۔ انہیں کئی دھمکیاں ملی تھیں کہ انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ ان کو اس کا پتا تھا، مجھے اس کا پتا تھا، لیکن میں اس بارے میں ان سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ان کا منوبل نہیں گرانا چاہتی تھی۔
5 لوگوں کو سادات کی ہتیا کی سازش رچنے اور ان پر گولی چلانے کے لیے موت کی سزا دی گئی۔ جیہان سادات اس سمے 85 سال کی ہیں اور ان کی گنتی مصر کے بڑے مانوادھکار کارکرتاؤں میں ہوتی ہے۔ باب جووینز بی بی سی کی نوکری چھوڑ چکے ہیں اور ان کے بیٹے جو ان کے ساتھ اس پریڈ میں گئے تھے جہاں سادات کی ہتیا ہوئی تھی اس سمے مصر میں رہ کر نوکری کر رہے ہیں۔ ریحان فضل، بی بی سی، دلی۔